नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि वर्तमान समय की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के विजेताओं को सम्मानित किया। दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंचा। सरकार ने सभी स्कूलों को 9वीं तक की कक्षाएं और 11वीं कक्षाओं को हाइब्रिड मोड पर चलाने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने कल कोलकाता के सॉल्ट लेक में मैसी के कार्यक्रम में हुई तोड़फोड़ की जांच के लिए जांच समिति गठित की। चेन्नई में विश्व स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि वर्तमान समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बचत की गई ऊर्जा की हर इकाई प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है। आज ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकारी प्रतिस्पर्धा के विजेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के पहले भारत ने अपनी स्वच्छ ऊर्जा वचनबद्धता को पूरा किया है। यह उन्नत ऊर्जा दक्षता और कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। इस अवसर पर केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने इस कार्यक्रम को विकास और पर्यावरण संरक्षण को प्रतिबिंबित करने वाला बताया। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण 2025 पर राष्ट्रीय चित्रकारी प्रतियोगिता के विजेताओं को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर कल से जॉर्डन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हो रहा है। जॉर्डन में भारत के राजदूत मनीष चौहान ने व्यापार, खाद्य सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के लिए इस यात्रा को महत्वपूर्ण बताया। हमारे संवाददाता ने बताया कि जॉर्डन 17,500 से अधिक भारतीय मूल के लोगों का घर है। वे हाशमी साम्राज्य के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने का अभिन्न अंग बन चुके हैं। भारतीय मूल के लोग वस्त्र निर्माण और विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं और वे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। दिल्ली सरकार ने 9वीं तक के विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल केवल 10वीं और 12वीं कक्षाएं स्कूल में होगी। 11वीं की कक्षा भी हाइब्रिड मोड पर चलाई जाएगी। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने राष्ट्रीय राजधानी में हवा की बिगड़ती गुणवत्ता को देखते हुए यह निर्णय लिया। दिल्ली समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप 4 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके तहत सभी निर्माण कार्यों और प्रदूषणकारी गैर जरूरी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने शहर के सभी शहरी और निजी कार्यालय को भी अपने कम से कम 50% कर्मचारियों से घर से ही काम लेने को कहा है। कोलकाता के सॉल्ट लेक युवा भारती स्टेडियम में कल हुई घटना के संबंध में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। इससे पहले पुलिस ने सॉल्ट लेक युवा भारती स्टेडियम में मैसी के कार्यक्रम के आयोजक शत्रुधर दत्ता को 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश असीम कुमार राय की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी की एक झलक न मिलने पर प्रशंसक और दर्शक कल युवा भारतीय स्टेडियम के मैदान में घुस गए और वहां की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इधर लियोनेल मेसी आज मुंबई पहुंचे। कोलकाता में उनकी उपस्थिति के दौरान अप्रिय स्थिति से संज्ञान लेते हुए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। कड़े प्रवेश नियम, वॉच टावर और भीड़ नियंत्रण उपायों के साथ ब्राबोर्न स्टेडियम और वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम का निर्बाध संचालन सुनिश्चित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया को लेकर कथित तौर पर भ्रम फैलाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि संसद में चुनावी सुधार पर व्यापक चर्चा हो चुकी है। इधर गोवा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट ASDD श्रेणी के लगभग 1,00,000 मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि 1,82,000 ASDD मतदाताओं की जानकारी डेटाबेस में नहीं मिली है। सभी ASDD मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे, जिसमें उन्हें 13 निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक के साथ सुनवाई के लिए उपस्थित होना होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि अफ्रीका से लाए गए चीतों के कुनो नेशनल पार्क में सफल स्थानांतरण के बाद वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य अगले वर्ष मानसून से पहले राज्य में चीता के लिए नया घर बन जाएगा। चीता परियोजना का उल्लेख करते हुए श्री यादव ने कहा कि भारत का मध्य प्रदेश विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां चीतों का पुनर्वास सफल रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि डाकिये विश्वास का सेतु रहे हैं, जो बैंकिंग, बीमा और सरकारी सेवाएं भी घर घर तक पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि डाकिये ने ग्रामीण भारत को जोड़ने और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री सिंधिया ने यह बात कल महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गांव और पुणे के लगभग 6,000 ग्रामीण डाक सेवकों से की। श्री सिंधिया ने कहा कि 1,65,000 से ज्यादा डाकघर लगभग 6,50,000 गांव को सेवा दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पर श्री सिंधिया के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री सिंधिया के लेख में नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव को मानवीय भावना से बहुरूप दर्शक और प्राचीन एवं समकालीन का उत्कृष्ट संगम बताया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में सम्राट पेरुम्बिडुगु मार्थारेयर द्वितीय स्वारन मारान के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्य के उप सभापति हरिवंश और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन उपस्थित थे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक नकली दवा विनिर्माण कारखाने का भंडाफोड़ करके 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को पुलिस अपराध शाखा के उपायुक्त आदित्य गौतम ने बताया कि आरोपी सुपरिचित ब्रांड के अंतर्गत नकली दवाओं के विनिर्माण और वितरण में संलिप्त थे। विश्व स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में आज चेन्नई में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। भारत ने कल रात सेमीफाइनल में मिस्र को 3-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारत के बेलवन सेंथिल कुमार ने मिस्र के इब्राहिम एलकावानी को हराया, जबकि अनाहत सिंह ने मिस्र के नूर हैकल गारक को मात दी। अभय सिंह ने मिस्र के एंड हवाल को हराया। इससे पहले एक अन्य सेमीफाइनल में हांगकांग ने जापान को हराया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरी T20 मैच आज शाम धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। मौसम विभाग ने कल तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में शीतलहर की स्थिति बने रहने का अनुमान लगाया है। अगले 4 दिनों तक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घने कोहरे की आशंका व्यक्त की गई है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर कल बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।